सुनो समझो और करो में आपका स्वागत है। मैं हूँ मंजू शर्मा। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान पर भरोसा। छोटे से कस्बे में एक वैजी रहते थे। मकान के पिछले भाग में उनका निवास था एवं सामने के भाग में उनका औषधालय। उनका एक नियम था, सुबह औषधालय आने के समय उनकी पत्नी उन्हें एक कागज़ देती जिसमें उस दिन की आवश्यकताओं की सूची होती। वैद्य जी औषधालय आकर उस कागज़ को खोलते और हृदय में अनुमान लगा लेते थे कि यह सामान कितने रुपये का आएगा। उनका नियम था कि वह किसी रोगी से कोई फीस मांगते नहीं थे, श्रद्धावश जितना रोगी देता उसी को स्वीकार कर लेते थे। उस पर भी जब धनराशि उनकी पत्नी की सूची का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त हो जाती तब वह रोगी से कोई धनराशि स्वीकार नहीं करते थे, चाहे रोगी कितना भी धनवान क्यों ना हो। आज जेठ मास की तपती हुई धूप की एक दोपहरी थी, सभी रोगियों को वैद्य देख चुके थे। तभी उनकी एक नन्ही सी पुत्री औषधालय में आई और पिता को भोजन के लिए घर आने को हट करने लगी। वैद्य जी औषधालय से बाहर आए, देखा एक संभ्रांत व्यक्ति उनके औषधालय के सामने खड़े हैं। वैद्य जी ने अभिवादन किया और शिष्टाचारवश उनसे प्रार्थना की इतनी तपती दोपहर में वह बाहर आकर खड़े ना हों, वरन अंदर आकर थोड़ा ठंडा जल पिएं और विश्राम करें। वह व्यक्ति वैद्य जी के प्रेम सहित आग्रह को न टाल सके और अंदर आ गए। बोले, मैं पास के शहर में रहने वाला एक व्यापारी हूँ, आज मेरे पिता की बरसी है। वहीं जा रहा था कि मेरी कार खराब हो गई, ड्राइवर पहिया बदल रहा है, शीघ्र ही चला जाऊँगा। वैद्य जी का औषधालय देखकर और वैद्य जी का सौम्य रूप से प्रभावित अचानक उसके हृदय में वैद्य जी के प्रति सम्मान की भावना जाग उठी। हाथ जोड़कर बोला, वैद्य जी विवाह को 5 वर्ष बीत गए हैं परंतु अभी तक संतान का सुख नहीं देखा। पत्नी को बड़े बड़े विशेषज्ञों को दिखलाया, इलाज किया पर कोई लाभ नहीं, क्या आयुर्वेद में कोई इसका इलाज संभव है? वैद्य जी बोले, संतान सुख वैसे तो ईश्वराधीन है परंतु मैं प्रयास कर सकता हूँ, कुछ दवाएं दे रहा हूँ, या तुम और तुम्हारी पत्नी नियमित रूप से 1 महीने तक लेना, अगर ईश्वर की कृपा हुई तो तुम्हें अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। उस व्यक्ति ने वह दवाइयाँ ली और वैद्य जी को इसका मूल्य देने का प्रयास करने लगा। वैद्य जी बोले, आज की मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ईश्वर ने मुझे पर्याप्त धन दे दिया है, अतः मैं आपका मूल्य स्वीकार नहीं कर सकता। इतने में ही ड्राइवर ने अपने मालिक को आवाज़ लगाई, कार ठीक हो गई थी। वह महानुभाव कृतज्ञता दर्शाकर चले गए। समय बीतता चला गया। इस घटना को 20 वर्ष बीत गए। वैद्य जी का क्रम उसी प्रकार चलता रहा। आज फिर उनकी पत्नी ने उन्हें एक सूची दी। जब वैद्य जी ने औषधालय आकर सूची खोली तो उनके होश उड़ गए। नन्ही सी बच्ची अब वयस्क हो चुकी थी, उसकी शादी एक परिवार में तय हो चुकी थी। शादी के पूरे सामान की यह सूची आज उनकी पत्नी ने उन्हें थमाई थी। यह तो हजारों रुपए का सामान है, इतनी धनराशि मैं कहाँ से लाऊंगा? पहले तो वैद्य जी का सर चकराया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए, भगवान पर विश्वास रखते हुए प्रतिदिन की तरह रोगियों को देखने का क्रम प्रारंभ किया। समस्त रोगी देख लिए। अब तो औषधालय बंद करने का समय हो गया है। बड़े अनमने से वैद्य जी उठे और औषधालय बंद करने जा रहे थे कि एक कार उनके औषधालय के सामने आकर रुकी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति कार से निकले और उपहारों के साथ औषधालय की ओर बढ़े। वैद्य जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोले, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना? आज से 20 वर्ष पूर्व मैं आपके औषधालय में अपनी कार खराब होने के कारण विश्राम हेतु आया था। तब आपने मुझ पर दया कर मेरे संतान विहीन जीवन को संतान में बनाने के लिए उपचार किया था। आज मेरी पुत्री की सगाई है। मैं अपनी पत्नी के साथ जब सगाई का सामान लेने बाजार गया तो मुझे आपकी और आपकी नन्ही सी बच्ची की याद आई। बस मैंने सभी सामान की 2 थैलियाँ बनवाई, एक मेरी बेटी के लिए और दूसरी आपकी बेटी के लिए, कृपया स्वीकार करें। वैद्य जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हे ईश्वर तेरी लीला। वह सभी सामान जो उनकी पत्नी ने सूची में दिया था प्रस्तुत था। यह कहानी वैद्य जी की ही नहीं हम सभी की है। भगवान पर भरोसा तो कीजिए, जो आपकी आवश्यकताएं हैं भगवान प्रदान करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।